लेकिन ये वो ज़माना था जब दो पेंस में इनकी गांव की लोकल शॉप में इस कदर फिश एंड चिप्स मिल जाते कि जिसे दो वक्त खाना भी मुहाल होता। जॉन डेविस और उसके भाई के लाए हुए ये 35 पेंस उसकी बेवा माँ को हफ्ता भर घर चलाने के लिए बहुत काफ़ी थे। दिन भर मजदूरी करने के बाद सर्दियों के मौसम में जब वो शाम गए वापस लौटते तो उनके गांव की गलियों में फिर से अंधेरा छा चुका होता। रोशनी थी तो सिर्फ स्पिरिट लैम्प की रोशनी, लेकिन गर्मियों के ज़माने में कुछ खुशगवार लम्हे भी मुयस्सर आते। शाम को काम से लौटने के बाद माँ के हाथ का बनाया हुआ मज़ेदार गर्म सूप और गर्मा गर्म खाना, और फिर वो और उसका भाई अपने मोहल्ले के मैदान में रग्बी खेलने चले जाते। उसकी ज़िंदगी के 8 साल इसी तरह गुजर गए। 17 बरस की उम्र में उसकी माँ और उसके करीबी रिश्तेदार की कोशिश से उसे रेल ट्रैक के पुर्जे बनाने वाली एक कंपनी में फैक्ट्री मजदूर की हैसियत से काम मिल गया।
कानपुरी के मुकाबले में ये काम इतना आसान था कि उसे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ तभी छुट्टियां गुजारने आया हो, बल्कि इसी फैक्ट्री में लोहे के बने हुए कुछ बड़े बड़े टब भी थे जिनका बुनियादी मकसद तो पुर्जों की सफाई था, लेकिन जॉन डेविस और उसके हम साथी सुपरवाइजर की नजरों से बचकर पानी से भरे इन टबों में स्विमिंग करते और खूब शोरगुल मचाते। अपने बचपन के खोए हुए उन 8 सालों का बदला लेने के लिए जो कोयले की कानों की अंधेरी गुफाओं में उनसे बिछड़ गया था, लेकिन उनके सीनों में उनकी एक एक सांस के साथ कार्बन के जर्रात की एक दीमक उनके फेफड़ों को गलाने के लिए अंधोनाक अंधेरा बनकर अभी उनके साथ था और ताउम्र उनके साथ रहेगा। ये 3 साल बहुत मजे से गुजरे और फिर दूसरी जंग अजीम इस मुसरता में इस मुख्तसर सी जिंदगी को निकल गई। वो और उसका भाई रॉयल मरीन में शामिल होकर इतिहादियों के साथ जंग करने के लिए एवरग्रीन से रवाना हुए।
वो अपनी कहानी मुझे सुना रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी ज़िंदगी के नशेबो फराज नहीं बल्कि हॉलीवुड की किसी दिलचस्प फिल्म के मनाजिर देख रहा हूँ। उसके चेहरे के तासुरात, उसकी आँखों की चमक और उसके हाथों की हरकत व सकनात और शायद मेरी महवियत और दिलचस्पी, ये सब कुछ बहुत तासुरंगेज़ था। नॉर्मंडी के करीब उसके भाई का बहरी जहाज़ जर्मन आबदोज ने टॉरपेडो किया और फिर जब वो अपने जवान भाई की लाश की शनाख्त के लिए मुर्दखाने में पहुंचा।
बयान करते हुए उसकी आंखों की चमक, हाथों की लर्जिश और उसकी मुस्कुराहट से निकलने वाली खुशी की किरणें काबिले दीद थी। जॉन डेविस यकीन एक भरपूर शख्सियत है। इस 82 साल बूढ़े का जहन अब भी ताजा है, लेकिन इसके फेफड़े कार्बन के जर्रात की दीमक से गल चुके हैं। कोयले की कान में बसने वाला अंधेरा अब भी उसकी जिंदगी के हमराह है।
इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एबरगविनी की इस मशहूर कान में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अब इसे म्यूजियम बना दिया गया है। कई सदियों पुरानी इस कान को, जिसे बिग पिट कहते हैं, वेल्श असेंबली में पास होने वाले एक कानून के जरिए 1985 में बंद कर दिया गया और इस सारे इलाके को वेल्श हेरिटेज के हवाले कर दिया गया। अब कोयले की ये मशहूर कान एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। खासे वसी इलाके पर फैली हुई ये जगह थोड़े थोड़े फासले पर कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स रखती है जहां निकाला हुआ कोयला प्रोसेसिंग के लिए मुख्तलिफ मदारिज से गुजरता होगा। ये मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे से कोई आधा आधा फरलांग पे वाक़े हैं और इनके दरमियान ट्रैक्स बिछाए गए हैं जो सारे प्रोसेस को आसान बनाते होंगे। लेकिन इस कान की सैर का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब हमारा सियाहती ग्रुप आहनी पिंजरे नुमा लिफ्ट में बैठकर नीचे ही नीचे कान की उस सतह पर पहुंचा कि जहां मजदूर कोयले की कान की खुदाई में मसरूफ होते थे। मैं गाइड के पीछे चलने वाले उन टूरिस्टों में शामिल था जो आहनी हेलमेट पहने और इस हेलमेट पर आवेज़ा बैटरी से चलने वाले लैंप की रोशनी में, इन तंगोतारीक पेचीदा राहदारियों में इंसानी तारीख के एक अलमिया बाब की तलाश में हैं। 7 फुट या बाज़ जगह 6 फुट बल्कि कहीं कहीं 4 फुट ऊंची और तकरीबन इतनी ही चौड़ी ये तंगोतारीक राहदारियाँ उन मकामात पर ख़त्म होती हुई कि जहाँ कोयले की खुदाई जारी होती थी। इन तंगोतारीक कानों में एक दुनिया आबाद है। मुझे वो मकाम बहुत दिलचस्प लगा कि जहाँ इन कानों में काम करने वाले घोड़ों को रखा जाता था, एक अस्तबल नुमा हिस्सा कि जिसमें बैक वक्त कई घोड़ों के साथ साथ खड़ा होने की गुंजाइश थी। छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए बाड़े की दीवारों पर इनमें रहने वाले घोड़ों के नाम खुदे हुए थे। ये घोड़े बहुत छोटी उम्र में इन कानों में लाए जाते और फिर ये अपनी तमाम उम्र अंधेरी राहदारियों में बोझ उठाने में बस उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में बाहर की हवा, रोशनी और मंज़र देखना नसीब न होता। ये नौम्र घोड़े जब इन तंगोतारीक पेचीदा राहदारियों में दाखिल होते तो मुकम्मल बसारत रखते थे, लेकिन चंद ही बरसों बाद सिर्फ स्पिरिट लैम्प की कभी कभार रोशनी मैसर आने और बेशतर औकात बिल्कुल रोशनी मैसर न आने की वजह से अपनी बसारत खो बैठते थे। ये सिर्फ आवाज़ और अंदाजे की बुनियाद पर बोझ उठाते, रास्ता ढूंढते और अपनी ज़िंदगी के तमाम मदारिज पूरे करते। रोशनी मैसर न हो तो बसारत खो जाती है। मुझे ये सच बहुत तकलीफ़ दे लगा और न जाने क्यों मुझे उन अनगिनत बच्चों का ख्याल आया कि जो तालीम की रोशनी से महरूम रह जाते हैं। अपने मुल्क में बसने वाले उन सियासतदानों की याद आई कि जो ज़िंदगी के सच और बदलती हुई हकीकतों के उजालों को अपने जहनों तक नहीं पहुंचने देते, और अपने मुल्क की उन मजबूर औरतों की याद आई जो हमारे समाजी तंगोतारीक और पेचीदा निज़ाम की जालिम राहदारियों में ज़िंदगियां गुजारती हैं लेकिन अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के हक से महरूम रहती हैं। अगर तुम कहो तो मैं जॉन डेविस को अंदर आने के लिए कहूँ, पॉलिन ने मुझे चौंकाते हुए कहा। मैं अपने ख्यालात के तसलसल से यकदम बाहर आया और इशारा करते हुए जॉन डेविस की आमद पर आमादगी का इजहार किया। ये साउथ वेल्स में बसने वाले एक आम आदमी की आम सी कहानी है, लेकिन जब भी मैं नामसाइद हालात की तारीकियों में इंसानी अज़्महिम्मत और मुसलसल जद्दोजहद और बिलाखिर कामयाबी की रोशनी तलाश करता हूँ तो मुझे ऐसे ही आम आदमियों की ज़िंदगी की कहानी से बढ़कर मोतबर कोई भी तारीखी दस्तावेज़ नहीं मिलती।